ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय सांख्य योग का दर्शन भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और इस अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दो श्लोक हमने अपने कुछ पिछले 4-5 सेटिंग में लिए। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इन दो श्लोकों में एक बद्ध जीव की स्थिति बताई है इस संसार में कि भगवान से विमुख होकर जब वो जीव इस संसार में भोग की इच्छा करता है तो वो किस प्रणाली से गुजरता है और अंततः प्रणश्यति भवकूप में। इस संसार की तुलना एक कूप या कुएं से की गई है, लेकिन ये कुआं ऐसा है कि जिसमें पानी नहीं। ये भवकूप एक ऐसा कुआं बताया गया है कि जिसके अंदर केवल अंधेरा अंधेरा और पानी नहीं। और वो ऐसी स्थिति जब वो भगवान से विमुख हो जाता है, लेकिन जब वो भगवान के उन्मुख होता है, भगवान की तरफ अपना मुख करता है, तो वही जो कुआं है वो शुद्ध शीतल मीठे जल में परिवर्तित हो जाता है उसकी तुष्टि और पुष्टि के लिए। तो भगवान धीरे धीरे अब अर्जुन को अग्रसर कर रहे हैं इस सिद्धांत को साबित करते हुए। तो आज का श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले ये दो श्लोक जो अभी हमने सुने इनसे संबंधित और इनसे ऊपर अर्जुन को ले जाकर ऊंचा दिव्य ज्ञान अब भगवान आज के श्लोक से शुरू कर रहे हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। मुंबई के कॉलेज में मैंने ये श्लोक जब लिया था एक बार तो एक विद्यार्थी मुझे आकर कहा कि भगवद गीता के आज तक के जितने आपने श्लोक लिए उनमें से मुझे सबसे अच्छा लगा अब तक। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसमें प्रसाद नाम लास्ट लाइन में प्रसाद है। तो यहां भगवान प्रसादम अधिगच्छति, इसका अर्थ यह है, प्रसाद के कई अर्थ हैं जो लिटरल मीनिंग संस्कृत का ये जो शब्द है प्रसाद, यदि अंग्रेजी में हम कहें एटिमोलॉजिकल मीनिंग, प्रसाद का अर्थ है कृपा। तो भगवान की कृपा, यहां पर भगवान अपने मुख से कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरी कृपा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है। और अर्जुन के द्वारा भगवान हम सबको बोल रहे हैं कि यदि हमें भी भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये जो हम खाते हैं वो भी कृपा है भगवान की, और भगवान का दर्शन वो भी भगवान का प्रसाद है, भगवान का कीर्तन वो भी भगवान का प्रसाद है, भगवान का कथन श्रवण सब कुछ भगवान का प्रसाद है। तो यहां इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी यदि विशेष कृपा या प्रसाद ये अर्जुन तुम प्राप्त करना चाहते हो तो ये सब करना है। पहले की तीन लाइन, तो इसका यदि विच्छेदन हम करें इस श्लोक का, तो पहली पंक्ति में भगवान बता रहे हैं कि बद्ध अवस्था में ये मन की स्थिति क्या होती है, राग द्वेष, और फिर भगवान कहते हैं विमुक्त स्तु, कि राग और द्वेष, राग का अर्थ है वो मराठी वाला नहीं राग, राग कर और कोई मेलेडी जो हम राग उसको भी बोलते हैं ना, आज हरे कृष्णा महामंत्र की अच्छी राग थी, यहां पर भगवान उस राग की भी चर्चा नहीं कर रहे। राग जैसे कि अनुराग, ये शब्द आपने सुना होगा, आसक्ति, राग का अर्थ यहां पर है आसक्ति, द्वेष का अर्थ है कि उसी आसक्ति से जब कोई व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, या अंग्रेजी में जिसे कहेंगे एवर्जन, अटैचमेंट एंड एवर्जन, राग द्वेष, तो भगवान कहते हैं विमुक्तस्तु, उससे विमुक्ति, न केवल मुक्ति अपितु विमुक्ति वो व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, अपनी आत्मा के सहारे जब वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, और विशेष रूप से जब वो अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाता है। इसलिए पिछले दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म तक ले आए, और अब उस न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से आगे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम पॉजिटिवली क्या करो मेरे लिए, उससे भी ऊपर। तो जब व्यक्ति उससे विमुक्त होकर अपने इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को जब वो भगवान की तरफ केंद्रित करता है, तब जाकर भगवान की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो संक्षिप्त रूप में इसका अनुवाद इस प्रकार से है, वह व्यक्ति जो समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त है, जो इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है, वह व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हमारे आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, राग तथा द्वेष का स्वरूप भगवान के द्वारा निर्धारित नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन, आज के श्लोक में नुस्खा पालन करने का परिणाम भी भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। तो पिछले श्लोक में, दो श्लोकों में अभी यदि हम देखें तो इंद्रियों की बद्ध अवस्था बताई है, केवल एक लाइन में यदि हम पिछले दो श्लोक का रूपांकरण करें तो इंद्रिय अवस्था, इंद्रिय की बद्ध अवस्था, और आज के श्लोक में इंद्रियों की मुक्त अवस्था। तो इंद्रियों को बहिष्कृत नहीं करना है, we don't have to banish our senses, we have to learn how to use senses in its pure form, उनकी शुद्ध अवस्था में। जैसे प्रभुपाद को एक व्यक्ति पूछे, is your Hare Krishna movement against sense gratification? प्रभुपाद ने कहा no। तब कई जो थोड़े नौसिखिया भक्त थे वो थोड़ा भ्रमित हो गए, अब तक तो इतने प्रवचनों में सेंस ग्रैटिफिकेशन का ऐसा बोलबाला था, लेकिन आज प्रभुपाद कह रहे हैं कि नो, वी आर नॉट अगेंस्ट सेंस ग्रैटिफिकेशन। तो प्रभुपाद ने फिर आगे कहा, वी टीच यू व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ सेंस ग्रैटिफिकेशन, इन फैक्ट दैट्स व्हाट कृष्णा इज टीचिंग, हाउ टू ग्रैटिफाई द सेंसेस in the correct manner, in the right manner, in the healthy manner। तो ये है भगवान के आज के श्लोक का विश्लेषण। तो यदि हम बद्ध अवस्था के दो लक्षण लें तो शुरुआत आज के श्लोक की राग और द्वेष से हुई है, अर्थात अटैचमेंट एंड एवर्जन। श्रील प्रभुपाद का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है एज इट इज भगवद गीता का, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं अटैचमेंट एंड एवर्जन। अब ये जो मन के, हमारे मन की जो दो स्थितियां होती हैं कि हम आसक्त होते हैं और फिर ये वो सिक्का है जिसका दूसरा बाजू क्या है, द्वेष। कि कई बार उसी वस्तु से, उसी जगह से, उसी व्यक्ति से जिससे हम आसक्त हुए, अक्सर देखा जाता है कि फिर द्वेष या फिर निरासक्ति या एवर्जन दिखने को आता है। तो हमारा जो मन है इसमें ये जो दो प्रकार की चीजें, अटैचमेंट और एवर्जन, तो ये क्या पैदा करते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही स्थूल स्तर पर चीजों के साथ हमारा आदान प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो है पैदा होने के बाद वो अपने माता पिता को इतना पहचानता नहीं, उसका आकर्षण सर्वप्रथम चीजों से होता है, ऑब्जेक्ट्स, है ना। उसके सामने कोई खिलौना हिलाओ तो अचानक कुछ हिलता हुआ देखा खुश हो जाता है। यहां तक बताया गया है कि बच्चे जब वो किसी बड़े वयस्क मनुष्य को भी देखते हैं तो उनको वो एक ऑब्जेक्ट ही दिखता है कि बहुत बड़ा कोई हिलता डुलता कोई खिलौना है। एक बहुत पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, तो उसमें बताया गया था कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो इतना प्रगत नहीं होता, धीरे धीरे उसमें वृद्धि प्रगति होती है, लेकिन बचपन में चिल्ड्रन दे आर सिंपली अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स। तो उनको अलग अलग प्रकार के खिलौने आप दिखाओ और उस प्रकार से, और उनको समझ में आता है कि ये खिलौना एक महीना पुराना है, इतना समझ में आता है उनको, एक महीना पुराना है दूसरा लाओ। तो ये जो उसके साइकोलॉजी होती है कि वो ऑब्जेक्ट्स, और धीरे धीरे होता क्या है कि हम सब जब बड़े हुए तो बचपन में हम जिन खिलौनों से इतना आसक्त थे, अब वो खिलौने यदि हमारे सामने लाएं, मन यदि खराब है, डिप्रेस, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ आप, वो निकाले एक ऐसे छल्लेदार खिलौना, कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है, मन ठीक लग रहा है, खुश हुए, थोड़ा खुश हुए नहीं। अब वही जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षण बिल्कुल भी नहीं है। ये बात नहीं है कि अभी हम सीधा एवर्जन में चले गए, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण देते हैं एक सेलफोन का। आजकल सेलफोन हर कोई यूज कर रहा है, तो अब एक ऑब्जेक्ट है सेलफोन। तो साधारणतः हम क्या देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति कोई सेलफोन खरीदता है तो उसमें उसकी आसक्ति दिखती है ना, कि हाँ मैंने नया सेलफोन खरीदा, अब आईफोन 3G 4S अभी 5 आने वाला है, अभी जो नया नया मॉडल सेलफोन का खरीदा, तो उसमें बहुत, और आसक्ति क्यों इसके अंदर इतनी है कि उसके अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं, और फिर जिससे मैं बात करना चाहता हूं और जिसके साथ आदान प्रदान करना चाहता हूं ये सेलफोन के द्वारा, तो वो सेलफोन चलता है और मुझे वो कुछ मेरा प्रयोजन सिद्ध कराकर दे रहा है, इसलिए मुझे वो अच्छा लग रहा है ना, आसक्ति क्यों है उसके अंदर। अभी वो सेलफोन के खिलौने भी बने आजकल, टी 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 आवाज आती, खाली बच्चों वो ऐसे लगाते हैं क्योंकि पिताजी को देखा, पिताजी वो आवाज करते इधर लगाते हैं लगा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, कोई सिम कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसमें से। तो जो एक्चुअल सेलफोन है, अब उसमें हम जो जो हमारे जान पहचान के उनका नंबर स्टोर करते हैं, है ना। फिर उसमें भी देखिए हमारा अटैचमेंट एवर्जन कैसे दिखता है सेलफोन से यूज करने में। जब कोई व्यक्ति जो हमारे बहुत निकट का है उसका जो फोन आता है ना, तो जैसे उसका नाम देखा तो तुरंत मन में अरे उठाया हमने, तो उसके अंदर पूरी अपनी आसक्ति वो मानो सेलफोन के द्वारा हम ट्रांसमिट करके उमड़ कर उधर भेज रहे हैं। अब वही सेलफोन वही रिंगटोन जब हमारे किसी बहुत निकट के प्रेसकर का कोई फोन आता है तो हमें इतना अच्छा लगता है, वही रिंगटोन कंपनी के बॉस का, वही सेलफोन है वही रिंगटोन है। एक मुंबई में एक विद्यार्थी, वो एक बार मेरे साथ, हम लोग बस में जा रहे थे, वो मंदिर आया था तो साथ में कॉलेज हम गए प्रोग्राम के लिए, तो मेरे बगल में बैठा था, उसका फोन रिंग किया तो आती कॉलर आईडी, कॉलर आईडी में मैंने देखा लिखा होता हेल, मैं तुमको वहां से भी फोन आता है। उसने कहा नहीं घर का नंबर है। तो तब देखिए वही ऑब्जेक्ट है और वही रिंगटोन है, लेकिन एक व्यक्ति के वजह से उसमें अटैचमेंट दिखता है और दूसरे व्यक्ति के वजह से द्वेष, एवर्जन। जैसे ये किस्सा हुआ था चंडीगढ़ में, इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच चल रहा है, बहुत बार हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा है और ये व्यक्ति एकदम वो लास्ट का होता है ना, चार बॉल छह रन हा? उस टाइप का वो सीन चल रहा है, सारे नाखून खा लिए, और इतना वो उत्साही कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। तो अब देखिए ये स्थिति में यदि लाइट चली जाए, हाँ लाइट तो छोड़ दीजिए, यदि उसकी धर्मपत्नी भी आगे से चली जाए तो ये सही घटना, पेपरों में इसकी खबर आई थी। तो हुआ क्या, एज यूजुअल जो भी इंडिया हार गई, तो इंडिया जैसे ही हारी, ये कोई ना फूलों का गुलदस्ता पड़ा था, उसने फूलों का गुलदस्ता हुआ टीवी फोड़ दिया उसने। अब वही टीवी उसको इतना सुख दे रहा था, जब जिसने भी सेंचुरी मारी, इंडिया थोड़ी जीतने की हालत में थी तो इतना उसको खुशी मिल रही थी, और वही ऑब्जेक्ट, अभी टीवी की क्या गलती, उसने थोड़ी कुछ उस इंडिया को हराया, फोड़ डाला टीवी। तो ये जब किसी की मानसिक स्थिति होती है कि वही ऑब्जेक्ट है, और हम पहले ऑब्जेक्ट की चर्चा कर, वही ऑब्जेक्ट है लेकिन अटैचमेंट एवर्जन, राग और द्वेष। और कितनी बार ऐसे हम हमारे जीवन में भी कि वही बीड बैग है ना, वही बीड बैग जब 16 वाला पूरा हो जाए तो इतना अच्छा लगता है, बीड बैग बहुत अच्छी लगती है, फिर उसको सजा के हम टंगाते हैं अच्छे से, सुबह सुबह 5:45 बजे जब देखते हैं सब काउंटिंग बीड्स ऊपर है, अभी तक एक भी माला नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत थ्रेटनिंग लगता है वो। तो ऑब्जेक्ट्स से जब हम डील करते हैं तो वहां पर हमारी मानसिक स्थिति देखी जाती है। फिर प्लेसेस, जगह स्थान, कि वही स्थान है, हमें अटैचमेंट हो जाता है वो स्थान स्थान से बहुत किसी कारणवश, और वही स्थान है कि किसी कारणवश वही स्थान हमारे अंदर वो द्वेष पैदा करता है। जैसे किसी को बहुत इमरजेंसी है, सुलभ शौचालय कहीं मिल नहीं रहा है, इतना सुलभ नहीं है, हालांकि नाम है सुलभ शौचालय लेकिन इतना सुलभ नहीं है, और बहुत इमरजेंसी क्रिएट हो गई। राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे, यू नो इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड नेचर्स कॉल, बट समटाइम्स इट स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, नेचर्स कॉल टर्न्स इनटू नेचर्स स्क्रीम। ऐसे होती ना कई बार परिस्थिति आ जाती है, कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अब मान लीजिए कोई वैसा पब्लिक टॉयलेट कितना भी गंदा हो, वो चाहे वो पिछले 100 सालों से साफ नहीं किया हो, लेकिन कितनी आतुरता है ना, कितनी आतुरता दिखती है उसके अंदर। एक हमारा मित्र किसी की शादी में गया था, तो वहां पे ऐसे ही स्थिति थी कि खाली एक ही कहीं पब्लिक टॉयलेट था, तो लाइन लगी हुई थी, ठंड का मौसम था, कुछ ने ज्यादा पानी वानी पी लिया था, तो जो परिवार के चचा वहां पे खड़े थे, तो उनका भतीजा आया वहां पे, तो भी देखा मुझसे पहले ये लाइन में खड़ा है, अंदर भी हाउसफुल है, ये भी खड़ा है, इसके बाद जाना पड़ेगा। तो ऐसे भी खड़े रहे, पूछते हैं कि कैसे कैसे खड़े, मतलब कैसे खड़े हैं, मैं नहीं ऐसे टहलने के लिए आए थे, गुस्से में बोल रहे हैं उनको। तो अब जब किसी की ऐसी स्थिति होती है, तो वही जो शौचालय है पूरा फोकस उसके ऊपर, उसके अंदर कुछ और नहीं दिखता, जैसे अर्जुन को केवल वो आंख दिख रही थी वो पक्षी की, और कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, अब जैसे ही पूरा काम पूरा होता है, उसके बाद में स्थिति देखिए, फिर जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकलो। इसलिए प्रभुपाद ये एग्जाम्पल यूज किया करते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट, टॉयलेट डू योर जॉब, फिनिश इट, डोंट हैंग अराउंड, कम आउट। तो यदि हम और भी कुछ स्थान लें, कि कई बार वही घर हमारे लिए बहुत हमको आसक्ति प्रदान करता है, और कई बार वही घर बहुत सी स्थितियों की वजह से हमें लगता है कि कब घर से बाहर निकले, तो स्थान, फिर स्थिति, सरकमस्टेंसेस, कई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मैं जब भी ये पंचवटी से जाता हूं बंबई और वापस आता हूं, तो हर समय एक साक्षात्कार होता है कि जैसे ही वो पंचवटी आती है नासिक रोड, इतनी आतुरता से घुस रहे हैं अंदर, पहले मैं एक के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, फेंक रहे सामान अंदर, घुस रहे हैं। देखा आपने कैसे घुसते हैं अंदर, इतनी आसक्ति, अंदर घुसना है, सीट पर बैठना है ट्रेन छूटने से पहले, और वही ट्रेन, वही व्यक्ति जब बंबई वो ट्रेन पहुंच जाती है तो अभी बाहर निकलना। अब देखिए यही रिंगटोन है, जब अभी बजता है तो हमारे अंदर तुरंत दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो वो पंचवटी में मैंने देखा कि नासिक रोड में इतने आतुर हैं अंदर घुसने के लिए, और जैसे ही बंबई ट्रेन आती है इतने आतुर अब बाहर निकलने के लिए। तो किसी व्यक्ति को जब मालूम नहीं होगा कि क्या चल रहा, तो बोला अरे इतने आतुर, तुम 3 घंटा पहले तो अंदर घुसने के लिए थे, अब बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो 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 जल्दी जल्दी। तो वहां पर स्थिति क्या क्रिएट हुई है? पहले स्थिति क्या थी जब नासिक रोड में ट्रेन आई, तो स्थिति क्या थी कि मेरा सफर अब चालू नहीं हुआ, अब चालू होगा। और फिर बंबई में स्थिति क्या हुई कि मेरा सफर पूरा हुआ। तो स्थिति में परिवर्तन आता है तो हम हमारे मन में ये राग और द्वेष का परिवर्तन देखते हैं। और फिर व्यक्ति, वही व्यक्ति है, इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, लेकिन कुछ साल बाद बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। फिर बाद में वही व्यक्ति वो हमारे आंखों को नहीं सुहाता। तो ये जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम यहां पर कौरवों को जो देख रहे हो, और जो स्थिति यहां पर पैदा हुई है, कौन सी स्थिति? ये युद्ध की स्थिति। तुम अर्जुन, भीष्म पितामह, दुर्योधन, इन सबको जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर ये राग और द्वेष, ये इसका द्वंद्व चल रहा है कि तुम अपनी आसक्ति देख रहे हो उनके अंदर, और फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं क्यों ये युद्ध करूं। तो द्वेष किससे हो रहा है अर्जुन को? युद्ध से। राग हो रहा है कौरवों से और द्वेष हो रहा है युद्ध से कि मुझे युद्ध नहीं करना, इनको नहीं मारना, क्योंकि मेरा इनसे अनुराग है। तो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु, इससे ऊपर उठो अर्जुन, ये द्वंद्वों से ऊपर उठो, ट्रांसेंड बियॉन्ड द ड्यूअलिटीज ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्जन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये साइकेट्रिक टर्म भी है जिसके अंदर मूड स्विंग्स, यदि आपने सुना होगा, अनुभव तो हम बहुत करते हैं, मूड स्विंग्स उसे कहते हैं। मूड स्विंग्स क्या होता है? जैसे कि झूला होता है ना, झूला, एक बार इधर एक बार उधर, पेंडुलम होता ना, ऐसे ऐसे हो। तो वैसे ही जब ये मन के संदर्भ में अर्जुन ने कहा चंचलम, फ्लिकरिंग, ये मूड स्विंग्स मतलब हमें अचानक हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, अचानक हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही देखा, किसी पेड़ को देख लिया, चिड़िया को देख लिया, मुस्कुरा दे। और कई बार मूड स्विंग्स मतलब उसके 1 मिनट बाद कोई कुत्ता भोंक दिया, कोई कुत्ता हम पे भोंक दिया, तो फिर चेंज मूड, चेंज, उसके बाद में फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, वही पेड़ है, वही चिड़िया है। अच्छा, इसको बोलते हैं द फ्लिकरिंग मूड स्विंग्स ऑफ द माइंड। तो यहां पर हम कुछ उदाहरण लेंगे कि ये मूड स्विंग्स करता क्या है। किसी व्यक्ति को जेंटलमैन से दूसरा बना देता है, मेंटल मैन। तो इसमें हम उदाहरण लेंगे कंस का, सभी वाकिफ हैं, कंस मामा, भगवान कृष्ण के मामा कंस। तो कंस का उदाहरण है। अब ये दृश्य है देवकी जो कि कंस की बहन है, और देवकी का विवाह, कंस ने सब कुछ कराया, इतना स्नेह। यहां पर आप देखिए कंस के मूड स्विंग्स को देखना अभी आप, कि अपने बहन का विवाह करा रहा है कंस, और कंस बड़ा राजा, वो बड़ा बहुत बड़ा राजा था वहां का, मथुरा देश का। तो अपने बहन का विवाह कराया बड़े धूमधाम से, और उसके पश्चात ये जो आप रथ देख रहे हैं, रथ में उसने जो वो सारथी था, सारथी को नीचे उतारा और खुद कंस सारथी बना कि मैं अपने हाथों से मेरी बहना को ले जाऊंगा उसके ससुराल। तो कितना उसके अंदर वो अटैचमेंट और स्नेह उमड़ उमड़ के दिख रहा था। किसके प्रति? देवकी और वसुदेव दोनों के प्रति। तो अब श्रीमद् भागवत में ये कथा है, कंस देवकी की शादी कराए और फिर रथ हांकते हुए देवकी को अपने ससुराल ले जा रहा है और सभी इतने खुश हैं कि देखो क्या प्रेम है एक भाई का अपने बहन के प्रति। और उसी समय आकाशवाणी होती है ना, ये गोलोक वृंदावन का आकाशवाणी केंद्र है। मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को ले जा रहा है उसी देवकी का आठवां पुत्र तेरी हत्या करने वाला है, तुझसे बड़ा मूर्ख कौन नहीं है। तो कंस जब सुनता ही है तो अब तुरंत मूड स्विंग देखिए कंस का। तो जेंटलमैन था कब तक? जब तक कि आकाशवाणी नहीं हुई। जैसे ही आकाशवाणी हुई अब वहां से तुरंत यहां पर आप ये देखिए तलवार निकाल लिया उसने, वो देवकी बिचारी तलवार निकाल लिया और उसी बहन को जो इतना वो प्रेम दिखा रहा था उसी बहन को खत्म, एक सेकंड भी नहीं वहां पर खत्म करने के लिए उतारू हो गए कंस। तो भागवत में वर्णन है, तो फिर वसुदेव जी देवकी के पति वसुदेव जी वो अब कंस को रोकते हैं और बहुत सुंदर वो फिलोसॉफिकल प्रीचिंग और उसको कन्विंस करते हैं कंस को और बोलते हैं कि तुमको देवकी से क्या शत्रुता है और देवकी का आठवां गर्भ है ना। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं हे कंस कि जितने सारे पुत्र पैदा होंगे वो मैं तुझमें लाके दूंगा, तेरा शत्रु देवकी का आठवां पुत्र है, देवकी को क्यों मार रहा है। और फिर बहुत कुछ वो अच्छी शिक्षा कंस को देते हैं। यहां पर देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में वसुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए प्रीचर और कंस उस वो जो आग बबूला हुआ उस स्थिति से कंस का दूसरा मूड स्विंग। अभी वसुदेव जी को देख के उनकी बातें सुनकर फिर थोड़ा वापस से जेंटलमैन की तरफ गया, रोक दिया उसने, ठीक है। तो फिर जो कुछ उसने उस समय कुछ नहीं किया। फिर जब पहला पुत्र वसुदेव और देवकी को हुआ तो वसुदेव जी वो पहला पुत्र लेकर आए और कंस के हाथ पकड़ा दिया और बोला कि जैसे मैंने प्रण दिया था, मैंने जो प्रॉमिस रखा था, तो मैं ये पहला पुत्र। तो अब कंस जब उसने देखा उस पुत्र को तो कंस के अंदर फिर वो मूड स्विंग आ गया, ये पहला पुत्र लेकिन देवकी का है और उसी गर्भ से आठवां पुत्र मुझे मारने वाला है तो मारने के लिए उतारू। लेकिन फिर जब वसुदेव की तरफ देखा कंस ने, तो वसुदेव की तरफ देखकर कंस बोलता है कि ऐसा जेंटलमैन कौन हो सकता है, तुम पिता हो और तुम खुद अपने बेटे को लेके आ, नहीं नहीं जाओ जाओ, मुझे तो आठवें पुत्र से डर है। वापस मूड स्विंग, गुस्सा आया, जेंटलमैन बना, अब वापस ये जेंटलमैन। तो अब नारद मुनि ने देखा यार ये तो बहुत डिले कर रहा है भगवान का आविर्भाव। तो नारद मुनि पहुंचे, नारद मुनि ने कंस को कहा, कंस तुम्हें दिमाग है कि नहीं, हालांकि नहीं था लेकिन। तो नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि देखिए बहुत तरीके से वो कंस को समझाते हैं। नारद मुनि कहते हैं एक कमल का पुष्प लेते हैं जिसकी आठ पंखुड़ियां और नारद मुनि कहते हैं बताओ कंस पहली पंखुड़ी कौन सी है इस कमल के पुष्प की। तो कंस बताइए वो तो गोल है, पहली कौन सी हो सकती है, आठवीं कौन सी हो सकती है। तो तब भी समझा नहीं, मतलब क्या है। तो नारद मुनि कहते हैं कंस ये कमल का जो पुष्प है इसमें तुम बता नहीं सकते कि कौन सी पहली पंखुड़ी है और कौन सी आठवीं पंखुड़ी। तो वो जो आकाशवाणी हुई उसने ये थोड़ी बताया कि आगे से आठवा पीछे से आठवा कौन सा या बीच से कहीं से। तो तुरंत कंस का मूड स्विंग दिखता है, वापस से मेंटल मैन, वसुदेव देवकी को लाओ कारागृह में डालो। और फिर कंस शुरू करता है एक एक कर सब देवकी के बच्चों को मारना। अब होता क्या है कि जब भगवान पैदा होते हैं तो जन्माष्टमी की रात भगवान तो अरेंजमेंट ऐसा किए कि रात के 12 बजे पैदा हुए, सब वैसे ही थोड़े नींद में थे और भगवान की योग माया शक्ति ने और उनको लोरी सुनाकर सुला दिया। जितने सारे पहरेदार थे और सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, सब कुछ। और फिर भगवान अपने आप को ट्रांसपोर्ट कराए, वसुदेव जी लेकर गए कहां से, मथुरा से गोकुल वृंदावन, और फिर वहां से जो नंद महाराज की पुत्री उनको लेकर। तो फिर जब कंस को समझ में आया कि दुर्गा देवी साक्षात योग माया जो कंस की आराध्य देवी थी, तो उन्होंने कंस को कहा कि कंस आठवां पुत्र तो पैदा हो चुका है, तू चाहे कुछ भी कर ले, वो आठवां पुत्र पैदा हो चुका है और वो अवश्य ही तुझे मारेगा, खत्म करेगा। तो अब कंस के अंदर फिर से एक मूड स्विंग होता है कि मैं इतना प्रयास किया, इतने सारे मैंने प्रयत्न किए, जतन किए, फिर भी मैं नहीं पकड़ पाया उस आठवें पुत्र को। तो अब वो उस पुत्री को मारने जा रहा है कि कहीं कोई यहां पर तो साजिश नहीं है, तो ये आठवीं पुत्री पुत्र पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर बहुत फिलॉसफी बोलता है, किसको, देवकी को। क्या फिलॉसफी बोलता है, देखिए अचानक वापस मूड स्विंग हो गया उसका, चेंज हो गया। फिलॉसफी ये बोलता है देवकी को कि देखो हम शरीर नहीं आत्मा है, ये उसका पूरा दशम स्कंद में पूरे उसके श्लोक हैं ऐसे, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो तुम्हारे जितने भी सारे पुत्र और ये पुत्री, ये शरीर थोड़ी, ये तो आत्मा है और आत्मा अमर है, आत्मा को कौन मार सकता है। तो और मैं भी शरीर, तो ये जो मेरा शरीर तुम्हारे पुत्रों के शरीर को मारा, तो ये तो एक शरीर जो पहले से मरा हुआ है दूसरे मरे हुए शरीर का कुछ किया, लेकिन मैं भी अमर हूं, तुम भी अमर हो, तुम्हारे सारे पुत्र वो भी अमर है। तो देखो ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी बोल रहा है। तो ये है कंस का उदाहरण दशम स्कंद में कि राग द्वेष, कि कैसे, ये नहीं समझना चाहिए कि 5000 साल पहले ये क्रूर राक्षस कंस जो हुआ था, जिसको भगवान ने उसका उद्धार किया, वो इतना बुरा इंसान था। नहीं, हमारे मन में भी ये कंस रूपी राग द्वेष चलता रहता है, चाहे कोई वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई जगह स्थान हो, चाहे कोई स्थिति हो या कोई व्यक्ति हो। वी ऑल हैव दैट कंस मेंटालिटी ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्जन फॉर ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस सर्कमस्टेंसेस एंड पीपल। और रामायण में उदाहरण कैकेयी का है कि वही कैकेयी जो प्रभु राम को इतना प्रेम किया करती थी, मंथरा के वजह से, मंथरा के मंत्रगणा के वजह से वही कैकेयी अब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए, और फिर जब वो किसके लिए, भरत के लिए, तो जब भरत आकर उनके पुत्र कैकेयी के पुत्र भरत आकर जब कैकेयी को खरी खोटी सुनाते हैं, तब कैकेयी को लगता है अरे मैंने जिसके लिए सब कुछ किया ये तो उल्टा आ रहा है मेरे ऊपर। तो उसी समय कैकेयी का मूड स्विंग परिवर्तित हो गई कैकेयी। तो ये सारे जो उदाहरण हैं कंस कैकेयी ये सब के, ये बताते हैं कि जो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि हमारा मन जो इतना चंचल फ्लिकरिंग है, उसके अंदर ये जो मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। तो अब भगवान ने पहली लाइन में बता दिया कि राग द्वेष, अब इससे विमुक्ति, केवल मुक्ति नहीं विमुक्ति कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? तो भगवान कहते हैं आत्मवश्यर विधि आत्मा, प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। देखिए बहुत ही सुंदर प्रभुपाद का ये ट्रांसलेशन है कि रेगुलेशन है लेकिन उसके अंदर फ्रीडम है। अब दोनों में विरोधाभास दिखता है कि रेगुलेशन मतलब आपको कुछ कुछ चीज रेगुलेट कर रही, सीमित कर रही है, लिमिट कर रही है, तो उसके अंदर फ्रीडम कहां दिखेगा? तो प्रभुपाद फिर बहुत सुंदर से लिखते हैं कि वही हमारी इंद्रियां जो कि हमें बांध रही हैं इस संसार में, वही इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इन आंखों को भगवान का दर्शन करने के लिए, इस जीवा को भगवान का गुणगान करने के लिए, इस हमारे कर्णों को भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए, पूरी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वही इंद्रियां जब रेगुलेटेड तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें मुक्ति, न केवल मुक्ति बल्कि भगवान बोल रहे हैं वी मुक्ति, विशेष रूपेण मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है, अब जैसे हम हमारी साधना भक्ति में इतने सारे नियमों का पालन करते हैं तो कई बार ये लगता होगा कि ये सारे नियम मुझे बांध रहे हैं, मुझे ना एकदम बंधन जैसा लग रहा है नियमों के अंदर। तो फिर एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे, जैसे मौसम चल रहा है आजकल संक्रांत, पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये एक उदाहरण दिया गया है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए। तो हम लोग सब पतंग देखे हैं उड़ते हुए, उड़ाए भी होंगे कितने सारे पतंग, तो पतंग को उड़ाने के लिए हमें पतंग चाहिए और अच्छी हवा चाहिए, और क्या चाहिए? मांजा, है ना। तो अभी कोई व्यक्ति जो ये पतंग उड़ाने के साइंस को नहीं जानता तो क्या देख रहा है कि यार पतंग ऊपर उड़ानी है और हवा पतंग को ऊपर ले जाएगी और ये मांजा तुम ऐसे खींचते हो, तो क्या लग रहा है कि वो जो मांजा है वो पतंग के फ्लाइट को, उसकी फ्लाइट को लिमिट कर रहा है ना, रेगुलेट कर रहा है, बांधा हुआ ना, पतंग बांधी हुई है उससे। तो यदि मैं पूछूं कि कोई छोटा बालक देख रहा है पिताजी उड़ा रहे हैं पतंग, वो बोला कि पिताजी ये धागा वो पतंग को बहुत रेगुलेट कर रहा है, इसको काट दो फिर और ऊपर अच्छे से उड़ेगी ना। तो हम सब जानते हैं वो मांजा काटा तो फिर आप देखो पतंग एकदम ऐसे ऐसे लहराती हुई दिखेगी, लेकिन कहां जा रही लहराती हुई? फिर उसको बोलते हैं कटी पतंग। फिर उसमें ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है कि नहीं? तो अब वो पतंग ऊपर जो लहरा रही है एकदम, हालांकि वो धागा मांजा दिखता भी नहीं, जब दो पतंग ऐसे आती हैं, देखिए कितनी दिख रहा है आपको, ये उड़ असली है फोटो, उड़ रही है वो, तो वो मांजा दिखता नहीं लेकिन वो मांजा एक दूसरे को काट देता है। तो यहां पर ये उदाहरण इसका इसलिए लिया है हमने कि वही जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब वही हमारी इंद्रियां हैं, उनको जब हम सही मायने में शुद्ध करेंगे भगवान की सेवा में लगाकर, तो वो उस हमारी जिंदगी की पतंग को, हमारी आध्यात्मिक जीवन की पतंग को, वो जो मांजा है जो कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, वो और फ्रीली ऊपर 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 उड़ाता रहेगा। नहीं तो मांझा काटा तो क्या होगा फिर? हालांकि वो दिखेगी कि देखो कितने सुकून से लहरा रही है, लेकिन कब तक? और फिर जैसे ही वो थोड़ा नीचे पहुंचती तो फिर क्या हालत होती है उसकी, जो दूसरे बिल्डिंग वाले क्या हालत करते हैं उसकी। तो ये उदाहरण दिया गया। एक और एक उदाहरण दिया ट्रैफिक सिग्नल का, कि ट्रैफिक सिग्नल है हालांकि वो हमारे ड्राइविंग को रेगुलेट कर रहा होगा वो रेड लाइट, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं हो, स्पेशली इंडिया में, तो कई बार नासिक में आपने देखा होगा, नासिक में तो सिग्नल भी है तो कोई परवाह नहीं, चल रहा है, सामने रेड सिग्नल है लेकिन लोग बाकियों को देखते हैं, उसको नहीं देखते, सब जा रहे हैं, चलो मैं भी चल रहा। जैसे मैंने बताया था कि एक बार मुंबई में वो सिग्नल मुझसे टूट गया, तो हमारे पांडू जी आए, हवलदार जी, बोले महाराज सिग्नल क्या तोड़ दिया, दिखा नहीं क्या? मैंने कहा दिखा, आप नहीं दिखे। तो हम लोग भारत में क्या है, ज्यादा उसको नहीं देखते कि आसपास कोई है कि नहीं। और होता क्या, अपने सिग्नल में वो जो ऑरेंज लाइट आती, तो ऑरेंज लाइट का मतलब क्या है कि स्लो करना है आपको, क्योंकि रुकना अभी रेड होने वाला है वो। तो ऑरेंज लाइट आती तो और एक्सीलेटर दबा के आगे भागते, उसका उल्टा करते। तो ट्रैफिक सिग्नल का भी एग्जाम्पल है कि जब वो है, उसका पर्पस क्या है कि फिर हम इत्मीनान से, बिना किसी डर के कि दूसरी सामने से कोई गाड़ी आके हमें नहीं ठोकेगी, तो इत्मीनान से वो ड्राइविंग कर सकते, फ्रीली वन कैन ड्राइव एंड एवरीवन फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स। सो दीज आर कॉल्ड द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ये भगवान प्रभुपाद ने कहा है। तो फिर इसको लिटरली प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट किया है वो ये ऐसा है कि डवटेलिंग वंस प्रोपेंसिटीज इन दी सर्विस ऑफ कृष्णा, कि हम जो भी हमारी प्रोपेंसिटीज हैं, जो भी हमारे अंदर कोई भी स्किल्स हैं, अलग अलग प्रकार के गुण हैं, वो सब को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति के अंदर काम क्रोध लोभ ये भी हैं, ऐसे अनर्थ को भी भगवान की सेवा में वो लगा सकते हैं, कि भगवान के प्रति लोभी होना, भगवान के नाम के प्रति लोभी होना, भगवान के प्रसाद के प्रति लोभी होना, वो तो मुश्किल नहीं है ज्यादा। फिर जो भी है क्रोध भी, जैसे कि अर्जुन ने और हनुमान जी ने वो क्रोध को इस्तेमाल किया प्रभु श्री राम की सेवा में, और अर्जुन ने भगवान की सेवा में, ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं तात्पर्य। तो जितने भी, और ये तो दुर्गुण हो गए, सोचिए कि यदि कोई दुर्गुणों को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है, तो सोचिए सद्गुणों को क्यों नहीं। और ये भगवान स्थापित कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम ये मत समझना कि तुम्हारे अंदर जो ये युद्ध कौशल का गुण है ये तुम्हें इस युद्ध के द्वारा बाधित करेगा, नहीं। हां, वो बाधित कब करेगा, जब तुम अधर्म के लिए वही बाण चलाओगे जो कि दुर्योधन करने वाला है, लेकिन जब तुम धर्म के लिए वो बाण चलाओगे मेरे निर्देशन में, तो वही एक एक बाण अर्जुन का अर्जुन को विमुक्तस्तु विमुक्ति दिलाएगा, और वही एक एक बाण दुर्योधन का जो कि अधर्म के झंडे के नीचे वो मारेगा, उसका एक एक बाण उसको बाधित करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल मैसेज है, लेकिन भगवान इस सिंपल मैसेज को अर्जुन को इतने अंत में भगवान ने कहा क्या कि ये इतना सा तुम उसका पालन करो कि मेरे अधीन और मेरे निर्देशन में जब तुम ये करोगे तो प्रसादम अधि गच्छति। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम युद्ध जीतोगे। देखिए यहां पर पहले तक भगवान क्या बोल रहे थे कि कैसे तुम्हें सदगति होगी, युद्ध जीतोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है, ये सब कुछ। यहां पे भगवान डायरेक्ट कहे कि तुम यदि मेरे आदेश के अनुसार ये युद्ध करोगे तो हे अर्जुन मैं अपने आप को दूंगा, मेरी कृपा मैं अब सर्वस्व तुम्हें दूंगा, यू विल अटेन मी, नॉट जस्ट विक्ट्री इन द वॉर बट यू विल अटेन मी। तो उसी प्रकार से जो भी हम हमारी स्थिति में हैं, चाहे परिवार में हैं, हम नौकरी में हैं, धंधे में हैं, पेशे में, जो भी है, जब हम हमारी इंद्रियों को, हमारी चेतना को, हमारी भावना को हम भगवान की ओर उन्मुख करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो उसका फल तो छोड़ दीजिए, वो धार्मिक पुण्य का फल तो छोड़ दीजिए, मैं स्वयं अपने आप को उस व्यक्ति को प्रस्तुत कर कर देता हूं। और ये भगवान आज के श्लोक में कहें, प्रसादम अधि गच्छति, भगवान की बहुत ही विशेष कृपा उसे प्राप्त होती। हरे कृष्ण।